ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। 13वां दक्षिण एशियाई खेलकूद प्रतियोगिता साक नेपाल में भव्यता के साथ हुआ संपन्न। 51 स्वर्ण सहित नेपाल ने हासिल किया दूसरा स्थान। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संघीय संसद के शीतकालीन अधिवेशन का किया आह्वान। और अंटार्कटिका की ओर उड़ी चिली की सैनिक विमान, संपर्क विहीन 38 यात्री थे सवार। अब समाचार विस्तार से। 13वां दक्षिण एशियाई खेलकूद साक आज नेपाल में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। 51 स्वर्ण सहित नेपाल दूसरा स्थान हासिल करने में सफल हुआ है। आज ही संपन्न पुरुष फुटबॉल फाइनल में नेपाल ने भूटान को 2-1 से हराकर स्वर्ण प्राप्त किया। इस समापन समारोह में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दक्षिण एशियाई खेलकूद नेपाल के लिए ऐतिहासिक रहा है। उन्होंने साक को सफल बनाने के लिए परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी को धन्यवाद दिया और आशा जताई कि आने वाले दिनों में इस प्रकार के खेल कार्यक्रमों से जरिए देशों के बीच एकता एवं मित्रता में अभिवृद्धि होगी। साथ ही उन्होंने नेपाल में साक के आयोजन से नेपाल भ्रमण वर्ष की तैयारी में सहयोग पहुंचने का भी विश्वास व्यक्त किया। इस भ्रमण वर्ष के अभियान को पूरा करने के लिए सहभागी देशों एवं प्रतियोगियों से भी आग्रह किया कि नेपाल भ्रमण वर्ष को सफल बनाएं। समारोह में उप प्रधान एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने साक की सफलता से नेपाल भ्रमण वर्ष को सफल बनाने में मदद पहुंचने का विश्वास व्यक्त किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के सदस्य सचिव रमेश सिलवाल ने कहा कि छोटे समय में की गई तैयारी के बावजूद साक प्रतियोगिता को ऐतिहासिक एवं भव्यता के साथ सम्पन्न करने में सफल रही है। गौरतलब है कि मार्च 15 गते ही राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इस साक खेल का उद्घाटन किया था। 26 खेल की विधाओं में 320 स्वर्ण, 320 रजत एवं 421 कांस्य पदक के लिए काठमांडू, पोखरा एवं जनकपुर में प्रतियोगिता का संचालन किया गया था। सन 1984 में पहली बार साक नेपाल में आयोजन किया गया था और यह तीसरा संस्करण है। दक्षिण एशियाई देशों के बीच इस प्रतियोगिता को खेलकूद उत्सव के रूप में लिया जाता है। साग में नेपाल, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, भूटान और श्रीलंका के खिलाड़ियों की 26 विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा कराई गई थी। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने आगामी पौष 4 गते संघीय संसद की शीतकालीन अधिवेशन का आह्वान किया है। सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंडारी ने आज संसद की शीतकालीन अधिवेशन का आह्वान किया। आश्विन 2 गते संघीय संसद की बजट अधिवेशन का समापन हुआ था। शीतकालीन अधिवेशन को विधेयक अधिवेशन के रूप में भी लिया जाता है। इस अधिवेशन के द्वारा नए सभामुख का चयन भी किया जाएगा। 71वां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाया गया। सन 1948 दिसंबर 10 के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार संबंधी विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी किया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने सिंह दरबार में जलपान कार्यक्रम का आयोजन किया। समारोह में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, राष्ट्रसभा के अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा, प्रतिनिधि सभा की उपसभामुख डॉ शिवमया तुमहामफे आदि मंत्रियों की उपस्थिति रही थी। इसी अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज ललितपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया था। कार्यक्रम में गृहमंत्री राम बहादुर थापा ने कहा कि नागरिकों के संपूर्ण अधिकार तभी सुनिश्चित हो सकते हैं जब देश में आर्थिक रूप से सबल और सुदृढ़ बनेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी के क्षेत्र में हुए सकारात्मक प्रयासों के कारण 28 वर्षों की अवधि में नेपाल की प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय में 130.5% की वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के प्रतिवेदन को सार्वजनिक करते हुए अर्थमंत्री डॉ युवराज खतीवड़ा ने कहा कि मानव विकास प्रतिवेदन में समाज के विभिन्न आयामों को समेटा गया है। आज सार्वजनिक किए गए प्रतिवेदन में सन 1990 से 2018 के बीच की समयावधि को समेटा गया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली किडनी के नियमित डायलिसिस के लिए त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान मनमोहन कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर एंड ट्रांसप्लांट सेंटर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ओली नियमित डायलिसिस के लिए आज सांझ अस्पताल जाने की जानकारी प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा ने दी। बता दें कि प्रधानमंत्री ओली का मार्गशीर्ष 10 गति मनमोहन कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर एंड ट्रांसप्लांट सेंटर में अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन किया गया था। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा कुमारी अर्याल ने कहा कि अव्यवस्थित बसोबास का दीर्घकालीन व्यवस्थापन किया जाएगा। भूमि व्यवस्थापन तालीम केंद्र धूलीखेल द्वारा आज धूलीखेल में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री अर्याल ने बताया कि अव्यवस्थित बसोबास को व्यवस्थित करने के लिए मंत्रालय पूरी कोशिश कर रही है। 2 दिनों तक चलने वाली इस गोष्ठी कार्यक्रम में नीदरलैंड, टर्की, चीन, भारत, अफगानिस्तान, मंगोलिया सहित 15 देश तथा नेपाल स्थित विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, भूमिविज्ञ, विद्यार्थी सहित 100 लोगों की सहभागिता रही है। ओखलडुंगा में टाटा सुमो के दुर्घटनाग्रस्त होने से 7 लोग घायल हो गए हैं। सोलुखुम्बे से काठमांडू की ओर आ रही सुमो सिद्धिचरण नगरपालिका 6 स्थित टोड़के में अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 150 मीटर नीचे गिरी थी, जिसकी वजह से ये दुर्घटना घटी। इसकी जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय ओखलडुंगा के प्रहरी निरीक्षक राजीव श्रेष्ठ ने दी। झूठा विवरण पेश कर नागरिकता बनाने की कोशिश में एक भारतीय नागरिक को आज जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा ने गिरफ्तार किया है। धनुषा जिला के धनुषाधाम नगरपालिका वार्ड नंबर 2 के जीत नारायण यादव को पिता बनाकर नागरिकता बनाने की कोशिश में भारत के बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के शंकरपुर ग्राम पंचायत के सुनील कुमार यादव को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कणेल ने दी है। बांके के कोहलपुर में मोटरसाइकिल के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोहलपुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 11 में सड़क डिवाइडर पर मोटरसाइकिल से टकराने से कोहलपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के 23 वर्षीय सुभाष कार्की की मृत्यु होने की जानकारी इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर ने दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अंटार्कटिका की ओर उड़ी चिली की सैन्य विमान संपर्क विहीन हुई है। ये विमान चिली की पुंटा एरेनास से उड़ी थी, जिसमें 38 यात्री शामिल थे। चिली हवाई सेना के द्वारा दी गई जानकारी अनुसार इस विमान में 17 चालक दल के सदस्य और 21 यात्री सवार थे। ये विमान स्थानीय समय अनुसार 4:55 पर पुंटा एरेनास से उड़ी थी और 6:13 पर संपर्क विहीन हुई। वहीं अफ्रीकी देश सूडान की एक फैक्ट्री में पिछले सप्ताह लगी आग में जान गंवाने वाले भारतीयों के शव आज भारत पहुंच सकते हैं। भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि जिन शवों की पहचान हो गई है उन्हें भारत भेजने की व्यवस्था की जा रही है। गत 3 दिसंबर को राजधानी खार्तूम में स्थित सिला सिरेमिक फैक्ट्री के एलपीजी टैंकर में हुए विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई थी। ये हादसे के बाद से भारतीय लोग लापता है। भारतीय दूतावास ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उन लोगों के नाम जारी किए थे जिनके शवों की पहचान हो चुकी है। बता दें कि सूडान की राजधानी खार्तूम में 3 दिसंबर को एक चीनी मिट्टी के कारखाने में एलपीजी टैंकर में धमाके से 23 लोगों की मौत हो गई थी और 130 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया था। आग लगने के दौरान इस कारखाने में 50 से अधिक भारतीय श्रमिक काम कर रहे थे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.2 और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर से। 13वां दक्षिण एशियाई खेलकूद प्रतियोगिता नेपाल में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। 51 स्वर्ण सहित नेपाल ने हासिल किया दूसरा स्थान। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संघीय संसद की शीतकालीन अधिवेशन का किया आह्वान और अंटार्कटिका की ओर उड़ी चिली के सैनिक विमान संपर्क विहीन 38 यात्री थे सवार। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।